एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
बिल्कुल।
नमस्कार। आज हम इंसान की जिंदगी के एक बहुत ही आम फिर भी गहरे और दिलचस्प पहलू पर चर्चा करेंगे, रिचुअल।
जी।
यानी रीति रिवाज या अनुष्ठान। सोचिए जरा, सुबह की चाय से लेकर शादी ब्याह और राष्ट्रीय पर्व तक, ये हमारी जिंदगी में हर तरफ फैले हुए हैं।
हाँ, हर तरफ।
लेकिन क्यों? क्या इनका कोई खास मकसद है, कोई रोल?
बिल्कुल। और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हमारे पास है बैरी स्टीवेंसन की किताब रिचुअल।
अच्छा।
ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि आज की भागदौड़ भरी बदलती दुनिया में हम अक्सर इन रस्मों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं
हाँ, ये तो है।
या बिना सोचे समझे निभाते चले जाते हैं।
तो ये समझना जरूरी है कि इन रिवाजों का हमारी सोच पर, हमारे रिश्तों और समाज पर क्या असर पड़ता है और इनका असल मकसद क्या है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्टीफनसन के नजरिए से समझें कि ये रिवाज असल में हैं क्या। क्या ये सिर्फ पुरानी आदतें हैं या फिर हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का जरिया।
जी।
हम उनके काम के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिवाजों की भूमिका और लक्ष्य क्या हैं।
बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं लेखक बैरी स्टीवनसन से।
हाँ।
वो न्यूफाउंडलैंड की मेमोरियल यूनिवर्सिटी में धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ रिवाजों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि वो इस बात पर भी गौर करते हैं कि हम रिचुअल शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
ओ, ये तो दिलचस्प है।
हाँ, उनका काम कई विषयों को छूता है, मानव शास्त्र, धर्म, समाज शास्त्र, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस स्टडीज भी।
अच्छा। और उनके नजरिए में एक खास बात है, जैसा आपने कहा, वो अकादमिक गहराई को बड़ी आसान भाषा में समझाते हैं।
जी बिल्कुल।
लेकिन सबसे खास है उनका वो दोहरा नजरिया जिसकी बात हो रही थी। एक तरफ वो मानते हैं कि रिवाज इंसान की जरूरत है ना।
हाँ।
ये हमें सुकून देते हैं, समाज को जोड़ते हैं, जिंदगी को मायने देते हैं। मतलब इनका एक साफ रोल और गोल है, एक उद्देश्य।
हाँ, लेकिन वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं।
अच्छा।
दूसरी तरफ स्टीवनसन हमें चौंकाते हुए ये भी कहते हैं कि रिचुअल शब्द वो खुद एक पश्चिमी ईजाद है।
क्या बात कर रही हैं, पश्चिमी ईजाद?
जी हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से दुनिया में थी, बल्कि विद्वानों ने, मतलब अपनी सहूलियत और सोच के हिसाब से, कुछ खास तरह की क्रियाओं पर ये लेबल लगाया है।
अरे।
तो वो पूछते हैं, हम किसी चीज को रिवाज क्यों कहते हैं?
इसके पीछे क्या सोच है, क्या मकसद है? कमाल है। तो मतलब वो रिवाजों के फायदों को भी मानते हैं और साथ ही हमें उस लेबल पर ही सवाल उठाने को कह रहे हैं जो हम उन पर लगाते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
सच में।
बिल्कुल। अब अगर किताब पर आए तो ये किताब हमारी रिचुअल्स की समझ को नई दिशा देने की कोशिश करती है। ये सिर्फ पुरानी रस्मों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये पूछती है कि ये हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभाते हैं और इनका लक्ष्य क्या है।
हाँ, किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ खाली औपचारिकताएं हैं या ये हमारी पहचान बनाने, मुश्किल वक्त में सहारा देने और हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं?
जी।
क्या ये सिर्फ धर्म से जुड़े हैं या हमारी रोजमर्रा की साधारण आदतों में भी रिवाज छिपे हो सकते हैं?
बिल्कुल। किताब के दिल में दो मुख्य धाराएं बहती हैं।
अच्छा।
एक नजरिया कहता है कि रिवाज इंसान होने का एक अहम हिस्सा है, वो हमारी व्यवस्था, अर्थ और जुड़ाव की जरूरतें पूरी करते हैं। ये हमें दुनिया में अपनी जगह समझने में मदद करते हैं। इस नजरिए से देखें तो रिवाज एक तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक टूल हैं जिनका एक खास मकसद है।
ठीक है। और दूसरा नजरिया,
जिसे तुम रिचुअल कह रहे हो, वो असल में क्या है? ये शब्द तो पश्चिमी सोच की देन है, जिसे अक्सर दूसरी संस्कृतियों को, मतलब कमतर आंकने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो ये नजरिया हमें रिवाजों के काम से ज्यादा इस बात पर ध्यान देने को कहता है कि हम किसी चीज को रिचुअल का दर्जा देते कैसे हैं और क्यों, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है।
ये तो बहुत कह रहा है। मतलब किताब सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी रस्मों को, उनके पीछे छिपे अर्थ और मकसद को समझना चाहता है।
अच्छा।
ये रिवाजों की जटिलता को खोलती है, कैसे वो एक ही वक्त में व्यक्तिगत भी होते हैं, सामाजिक भी और सांकेतिक भी।
चलिए आप कुछ और गहरी बातें करते हैं रिवाजों के बारे में। सबसे पहली चुनौती तो रिचुअल को परिभाषित करने की है, है ना?
हाँ बिल्कुल। स्टीफनसन बताते हैं कि विद्वानों में इस पर कोई आम सहमति नहीं है।
अच्छा।
फिर भी काम चलाने के लिए एक समझ ये है कि रिवाज ऐसी शारीरिक और संकेतिक क्रियाएं हैं जो दोहराई जाती हैं और जिनमें बदलाव लाने की क्षमता होती है। इनमें अक्सर औपचारिकता, लयबद्धता और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है।
ठीक है, ये तो हुई एक कामकाजी परिभाषा
जी।
लेकिन यहीं पर स्टीफनसन का दूसरा वो आलोचनात्मक पक्ष सामने आता है।
हाँ।
वो याद दिलाते हैं कि रिचुअल शब्द का इतिहास कैसा रहा है। यूरोप में धर्म सुधार के बाद प्रोटेस्टेंट लोगों ने कैथोलिक रस्मों को खाली रिवाज कहकर खारिज किया।
अच्छा, ऐसा भी हुआ
जी। फिर उपनिवेशवाद के दौर में पश्चिमी विद्वानों ने दुनिया भर की अलग अलग प्रथाओं को रिचुअल के खांचे में डालकर उन्हें मतलब पिछड़ा या अतार्किक साबित करने की कोशिश की।
ओह, तो मतलब रिचुअल कहना सिर्फ वर्णन करना नहीं बल्कि एक तरह का फैसला सुनाना भी हो सकता है।
बिल्कुल, ये सोचना जरूरी है कि इस लेबल को लगाने का मकसद क्या है। अच्छा, अगर परिभाषा मुश्किल है तो शायद ये समझना ज्यादा आसान हो कि रिवाज करते क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है।
हाँ, और यहाँ स्टीवनसन कई मकसदों की बात करते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर पर।
मनोवैज्ञानिक कैसे?
रिवाज हमें एक ढांचा देते हैं, अनिश्चितता कम करते हैं। सोचिए, रोज सुबह एक ही तरह से कॉफी बनाना या पूजा करना।
हाँ।
ये छोटी क्रियाएं भी हमें स्थिरता और नियंत्रण का एहसास देती हैं।
सही बात है।
ये तनाव कम करने और भावनाओं को संभालने में मददगार हो सकती हैं। इनका एक साफ लक्ष्य है मानसिक सुकून।
ये तो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, और सामाजिक स्तर पर?
सामाजिक स्तर पर यहाँ डरखाइम जैसे समाजशास्त्रियों का जिक्र आता है।
हाँ, डरखाइम।
रिवाज समाज को, यूं समझिए, गोंद की तरह जोड़ते हैं।
गोंद की तरह? अच्छा।
जब लोग साथ मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं, तो इनमें एक सामूहिक उत्साह पैदा होता है।
कलेक्टिव एफर्वेसेंस।
हाँ, बिल्कुल। कलेक्टिव एफर्वेसेंस, एक गहरी एकता और अपनेपन की भावना। इसका मकसद है समूह की पहचान को मजबूत करना।
सही है।
इसी से जुड़ा है संक्रमण के संस्कार या राइट्स ऑफ पैसेज का विचार।
अच्छा, राइट्स ऑफ पैसेज।
जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, जन्म, जवानी, शादी, मौत।
हाँ।
रिवाज इन बदलावों को संभालने में मदद करते हैं। जैसे वैन गेनिप ने बताया, इनके तीन चरण होते हैं। पहले आप पुराने समूह से अलग होते हैं, फिर एक बीच की अनिश्चित अवस्था से गुजरते हैं जिसे लिमिनालिटी कहते हैं,
लिमिनालिटी,
और आखिर में नई भूमिका के साथ समाज में वापस जुड़ते हैं।
अरे वाह।
देखिए, ये तो हमारे यहाँ मुंडन, जनेऊ, शादी की रस्में या रिटायरमेंट पार्टी जैसा ही है।
बिल्कुल।
ये सब हमें जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे में ले जाने के पुल का काम करते हैं। जी हाँ। और उस बीच की अवस्था लिमिनालिटी में, जैसा विक्टर टर्नर ने कहा, अक्सर सामाजिक भेदभाव मिट जाते हैं और एक गहरी बराबरी और भाईचारे, कम्युनिटस का एहसास होता है।
कम्युनिटस।
इन सब का लक्ष्य है जीवन के बदलावों को सहज बनाना।
बिल्कुल।
एक और बहुत जरूरी बात है शरीर की भूमिका।
शरीर की?
अच्छा, स्टीवनसन जोर देते हैं कि रिवाज सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इनका असली अनुभव शरीर से होता है। सोचिए, प्रार्थना में झुकना, डांस करना, मंत्र पढ़ना, ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं।
हाँ, बिल्कुल।
ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारी मांसपेशियों में, हमारी सांसों में बसता है। इसे दैहिक बुद्धि या सोमैटिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं।
दैहिक बुद्धि। हाँ, जैसे कैथरीन बिल कहती हैं, रिवाज शरीर के जरिए सोचने का तरीका है।
जी।
क्रियाएं सिर्फ अर्थ नहीं ढोती बल्कि वो खुद अर्थ पैदा करती हैं।
सही कहा।
जब हम कोई रिवाज करते हैं तो हम सिर्फ कुछ दर्शा नहीं रहे होते हैं बल्कि हम उस क्रिया के जरिए अपनी दुनिया को, अपने रिश्तों को घड़ रहे होते हैं। तो शरीर का इस्तेमाल रिवाज के मकसद को पाने का एक अहम जरिया है।
बिल्कुल।
और यहीं पर अर्थ और पवित्रता का सवाल आता है।
अर्थ और पवित्रता।
रिवाज दुनिया को समझने का नक्शा बनाते हैं। वो बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या महत्वपूर्ण है। जैसे क्लिफर्ड गीट्स ने कहा।
हाँ, गीट्स।
रिवाज एक तरह के पाठ हैं जिन्हें समाज बार बार पढ़ता है। उन्हें सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि उनके गहरे सांस्कृतिक मतलब, जिसे वो थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं,
थिक डिस्क्रिप्शन,
हाँ, उसे समझना जरूरी है।
जैसे गीट्स का बाली द्वीप की मुर्गों की लड़ाई का विश्लेषण।
हाँ।
वो दिखाता है कि कैसे खेल वो सामाजिक हैसियत, इज्जत और तनावों का आईना बन जाता है।
बिल्कुल। और रिवाज साधारण जगहों और समय को खास पवित्र बना देते हैं।
पवित्र बनाए गए स्थान है, लेकिन ये पवित्रता सिर्फ धार्मिक जगहों तक सीमित नहीं है।
अच्छा, तो और कहां?
बिल्कुल, स्टीवेंसन कहते हैं कि पवित्रता कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम जाते हैं, बल्कि एक एहसास है, एक आयाम है जिसे हम रिवाज के जरिए बनाते हैं।
ओह,
ये किसी कॉन्सर्ट में हजारों लोगों के साथ गाने में भी महसूस हो सकती है, या किसी राष्ट्रीय पर्व की परेड देखते हुए भी।
हाँ, सही कहा।
इसका लक्ष्य होता है रोजमर्रा की दुनिया से ऊपर उठकर कुछ खास, कुछ गहरा अनुभव करना।
तो ये सब तो रिवाजों के काम और मकसद की बातें हुई, लेकिन स्टीवेंसन का वो आलोचनात्मक पक्ष भी है।
जी,
खासकर जब हम आज के रिवाजों को देखते हैं।
हाँ, यहीं पर कैथरीन बेल का रिचुअलाइजेशन का विचार काम आता है।
रिचुअलाइजेशन, ये क्या है?
वो कहती हैं कि हमें रिचुअल, जो कि एक संज्ञा है, से ज्यादा रिचुअलाइजेशन, जो क्रिया है, पर ध्यान देना चाहिए।
अच्छा, क्रिया पर?
मतलब ये देखना चाहिए कि कैसे कुछ खास क्रियाओं को जानबूझकर दूसरों से अलग, ज्यादा औपचारिक, ज्यादा खास बनाया जाता है। ये एक रणनीति है।
रणनीति?
हाँ।
किस तरह की रणनीति?
शक्ति की रणनीति।
शक्ति की?
हाँ, जब हम किसी चीज को रिचुअल का दर्जा देते हैं, चाहे वो राज्याभिषेक हो या दफ्तर की सालाना मीटिंग, तो हम उसे एक खास वजन, एक खास अधिकार दे रहे होते हैं। हम तय कर रहे होते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। ये शक्ति संबंधों को बनाता भी है और चुनौती भी दे सकता है।
अच्छा,
जैसे कोई विरोध प्रदर्शन भी एक तरह का रिचुअलाइजेशन है जो सत्ता को चुनौती देता है।
अरे वाह।
इसका लक्ष्य होता है सामाजिक व्यवस्था को बनाना या बिगाड़ना।
वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है।
हाँ।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या सार है?
मेरे हिसाब से कुछ खास बातें हैं। पहली, रिवाज जरूरत या नजरिया।
हाँ।
एक तरफ रिवाज हमारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें पूरी करते हैं, उनका एक साफ रोल और गोल है।
बिल्कुल।
दूसरी तरफ, रिचुअल शब्द खुद एक पश्चिमी लेंस है जिसे हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। स्टीवेंसन हमें दोनों पहलू दिखाते हैं।
सही है। दूसरी बात?
दूसरी बात, शरीर ही सब कुछ है। रिवाजों को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं समझा जा सकता।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
उनका असली ज्ञान और असर हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों के अनुभव से आता है। क्रियाएं खुद ज्ञान का स्रोत है।
बिल्कुल। तीसरा?
तीसरी, हम जुड़ते हैं रिवाजों से। रिवाज हमें अकेले में और समूह में जोड़ते हैं। ये पहचान बनाते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं और समाज को आकार देते हैं। इनका एक बड़ा मकसद समुदाय बनाना और बनाए रखना है।
समुदाय बनाना? हाँ। चौथी बात?
चौथी, बदलाव और मायने। रिवाज जिंदगी के उतार चढ़ाव संभालने में मदद करते हैं और हमें दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। ये स्थिरता भी लाते हैं और बदलाव के वाहक भी बन सकते हैं।
ठीक है। और आखिरी?
और आखिरी, लेबल से सावधान। किसी चीज को रिचुअल कहने के असर को समझना जरूरी है।
हाँ।
कैसे जुड़ा है, हमें सवाल पूछना चाहिए कौन कह रहा है और क्यों।
बिल्कुल, मैं जुड़ने वाली बात को हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ना चाहूंगा।
हाँ, बताइए।
जैसे भारत में परिवार के साथ बैठ के खाना खाना, ये सिर्फ पेट भरना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
जिस तरह से खाना परोसा जाता है, कौन कहाँ बैठता है, किस तरह की बातें होती हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर इसे एक रिवाज बनाती हैं।
जी।
इसका मकसद होता है परिवार के बंधन को मजबूत करना, प्यार जताना और अगली पीढ़ी को संस्कार देना। ये साधारण सी क्रिया गहरे सामाजिक लक्ष्य साधती है।
बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ विचारों को साझा करते हैं?
हाँ, जरूर। एक है, रिचुअल शरीर का वो तरीका है जिससे वो जानता है जिसे मन समझ नहीं सकता। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ ज्ञान सिर्फ करने से आता है, सोचने से नहीं।
बिल्कुल। दूसरा, हम रिवाज नहीं रखते, रिवाज हमें रखते हैं।
वाह।
ये रिवाज की ताकत दिखाता है। जब हम पूरी तरह शामिल होते हैं तो वो हमें अपने बहाव में ले जाता है, हमें बदल देता है।
सही है। तीसरा?
तीसरा, पवित्र वो स्थान नहीं है जहां हम जाते हैं, बल्कि एक आयाम है जिसे हम रिवाज क्रिया के माध्यम से बनाते हैं।
मतलब पवित्रता बाहरी नहीं, अंदरूनी अनुभव है जिसे हम अपने कामों से रचते हैं।
जी। और आलोचनात्मक पक्ष से एक विचार, रिचुअल दुनिया में मौजूद क्रियाओं का वर्ग नहीं है, बल्कि यह एक लेंस है जिसे हम दुनिया पर रखते हैं।
ये बताता है कि रिचुअल असलियत से ज्यादा उसे देखने का एक चश्मा है।
बिल्कुल।
और आखिरी,
सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि रिचुअल क्या है, बल्कि ये है कि कुछ कामों को रिचुअल जैसा खास दर्जा क्यों और कैसे दिया जाता है।
जी, ये हमें रिचुअलाइजेशन की प्रक्रिया और उसके पीछे की शक्ति पर ध्यान देने को कहता है।
हाँ,
ये सब बातें हमें अपनी रोजमर्रा की रस्मों को नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। बिल्कुल, तो इन विचारों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकल बातें?
हाँ, सोच सकते हैं।
हम अपने लिए छोटे छोटे रिवाज बना सकते हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना या हर हफ्ते परिवार के साथ कुछ खास करना। ये हमें स्थिरता और खुशी दे सकते हैं।
बिल्कुल, रिश्तों में सालगिरह या जन्मदिन जैसे मौकों को सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक खास रिवाज की तरह मनाएं जो आपके बंधन को मजबूती दे। बच्चों के लिए सोने के समय कहानी सुनाना भी एक प्यारा रिवाज बन सकता है जिसका लक्ष्य सुरक्षा और प्यार का एहसास देना है।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और दफ्तर में भी सोचें, मीटिंग शुरू करने का तरीका, किसी की तारीफ करने का ढंग, क्या इनमें कुछ बदलाव लाकर टीम को ज्यादा जोड़ा जा सकता है?
हाँ, क्यों नहीं। और समाज में त्योहारों या राष्ट्रीय दिवसों पर सिर्फ छुट्टी ना मनाए बल्कि सोचे कि ये रिवाज हमें क्या सिखाते हैं, कैसे जोड़ते हैं।
सही बात।
और हाँ, रिचुअलाइजेशन वाले नजरिए से देखें।
हाँ, वो कैसे?
कोई पारिवारिक डिनर है तो देखें कि उसे खास कैसे बनाया जाता है। मेज की सजावट, बैठने की जगह, बातचीत के नियम, ये सब मिलकर उसे सिर्फ खाने से ज्यादा कुछ बनाते हैं। यही चीज किसी राजनीतिक रैली या विज्ञापन पर भी लागू होती है। उन्हें खास और असरदार बनाने के लिए किन रिवाजों जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है?
बिल्कुल। तो अंत में, इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख या हैरानी की बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी हैरानी यही थी कि रिचुअल जैसा आम लगने वाला शब्द कितना जटिल और ताकतवर हो सकता है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसके अपने इतिहास और असर हैं। ये सोचना कि हम जिसे रिचुअल कह रहे हैं वो वाकई क्या है और हम उसे ये नाम क्यों दे रहे हैं, ये एहसास बहुत गहरा था।
और मुझे शरीर और क्रिया पर दिया गया जोर बहुत पसंद आया।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ सोचने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने, करने और अनुभव करने का नाम है।
सही कहा।
और रिवाजों के बदलने की क्षमता भी कमाल की है। कैसे वो वक्त के साथ नए रूप धर लेते हैं, पर उनका मकसद जुड़ना, समझना, सहारा देना कहीं ना कहीं बना रहता है।
हाँ, ये अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
जी,
अगर रिवाज काफी हद तक एक लेबल है जो हम लगाते हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की और कौन सी साधारण क्रियाओं को जानबूझकर रिवाज का दर्जा देकर उन्हें ज्यादा मायने और मकसद दे सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।